लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि जिन समाजों में सह अस्तित्व अधिक कठिन प्रतीत होता है, वे जातीय, राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से टकराव के प्रलोभन में न फंसें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, मानव के रूप में हमारा मन ध्यान जिन बातों, चीजों और व्यक्तियों में लग जाता है, हम उन्हें अपने लिए हासिल करने में लग जाते हैं। वे चीजें जिनसे हम मोहित हो जाते और जिनसे हमारा लगाव हो जाता है, हम उन्हें अपने वश में करने और उन्हें अपना बनाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। इस भांति हमारा यह व्यवहार उन चीजों, वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में हमारे प्रेम को व्यक्त करता है, जहां हम उन्हें अपने लिए महत्वपूर्ण मूल्यवान चीजों के रूप में पाते हैं। अपने उन मूल्यवान चीजों को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते और उन्हें प्राप्त करने पर अपने लिए सहेज कर रखते हैं। यदि हमारी उन चीजों पर कोई बुरी दृष्टि गड़ाता, उन्हें हमसे छीनने और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता, तो हम वैसे लोगों से पंगा लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। श्रोताओ, वर्ष के 19वें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए एक ऐसी अक्षय संपत्ति जमा करने की बात कहता है जो किसी भी रूप में नष्ट नहीं होती है। यह हमारे लिए वह धन है जिसे संसार का कोई भी चोर ना तो चुरा सकता है और ना ही कोई कीड़ा खाकर नष्ट कर सकता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने दैनिक जीवन में किन चीजों, किस धन को प्राप्त करने हेतु दिन रात मेहनत करते हैं। उस धन की प्राप्ति हेतु हमारे कैसे मनोभाव और व्यवहार होते हैं। हमारे द्वारा अर्जित किए जाने वाला धन हमें किस हद तक खुशी और शांति प्रदान करता है।
छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उनके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने में इस बात को सही अर्थ में जानने और समझने हेतु मदद करे कि हमारे लिए ईश्वर का सच्चा धन क्या है, जिससे हम उस ईश्वरीय धन को अपने में संग्रहित करने और उसे सुरक्षित रखने में बड़े ही मुस्तैदी से कार्य कर सकें। श्रोताओं, प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया आज के पहले पाठ में हम अपने को ईश्वर के अमूल्य निधि स्वरूप पाते हैं। यहवे ने अपनी चुनी हुई प्रजा को मिस्र देश में घोर विपत्ति से बचाने हेतु पहले से पूर्व सूचना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए उन्हें तैयारी करने का निर्देश दिया, जिससे वे उन्हें बचाकर राजा फराउन की गुलामी से बाहर निकाल प्रतिज्ञात देश की ओर अग्रसर कर सकें। श्रोताओं, हम में से हर कोई ईश्वर के लिए एक अनमोल निधि के समान है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं हमारी चिंता करते हुए अपना जीवन और अपना प्राण, अपनी आत्मा हमारे संग साझा किया है। यह हमारे लिए इस सच्चाई को व्यक्त करती है कि हमारा स्वयं में अपना कोई भी व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। हम अपने में कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा जो कुछ है वह हमारे लिए ईश्वर की ओर से प्रेम उपहार सदृश प्राप्त हुआ है। ईश्वर को प्रिय होने के कारण वे हमारी चिंता करते और सदैव हमारी सुधि लेते हैं, वैसे ही जैसे कि हम अपनी प्रिय वस्तुओं की चिंता करते और उनकी देखरेख करते हैं। श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि कितनी ही ऐसी परिस्थितियां हैं जहां ईश्वर ने हमें विभिन्न तरह की विपत्तियों और बुराइयों से बचाकर जीवन के सुरक्षित मार्ग में अग्रसर किया है, जिससे हम उनकी महिमा और स्तुति कर सकें। अपने जीवन की संकट भारी परिस्थितियों में हमारा बचाया जाना हमें अपने जीवन और मुक्तिदायी ईश्वर की सर्वशक्तिमता, विशालता और करुणावान होने की सुनिश्चितता प्रदान करती है, और यह हमें उनमें अपने विश्वास को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए इसी विश्वास की सार्थकता को व्यक्त करता है, जहां हम अब्राहम के विश्वास का जिक्र पाते हैं। अब्राहम हमारे लिए विश्वास के पिता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई सारी बातों को पूर्ण विश्वास के कारण अपने हृदय में अनमोल निधि स्वरूप संचित रखा। ईश्वर में अपने अटूट विश्वास के कारण उनकी परीक्षा ली गई, जहां बुढ़ापे में मिली संतान को भी उन्हें बलि अर्पित करने का आदेश मिला, लेकिन वे अपनी इन परीक्षाओं में कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास था कि जीवन देने वाले ईश्वर उनके जीवन की सारी आवश्यकताओं और प्रतिज्ञाओं को सदैव पूरा करेंगे। विश्वास का दीप उनमें सदैव जगमगाता रहा और उनकी कमर सदैव किसी भी कार्य के लिए कसी रही। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने लिए वह पूंजी जमा करने को कहते हैं, जिसे खोने और नष्ट होने का कोई भय नहीं है। वह कौन सी ऐसी पूंजी है जो हमारे जीवन में कभी नष्ट और खत्म नहीं होती है? निश्चित ही यह स्वर्ग राज की निधि है, जो विश्वास के कारण हमें प्राप्त होती है, जहां हम अपने ईश्वर के संग संयुक्त रहने हेतु बनाए गए हैं। हमारे विश्वास के कारण हम ईश्वर से सदैव संयुक्त रहते हैं, जिसके कारण और जिनमें हमारे लिए सदैव सारी चीजें आशीष और कृपाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं। ईश्वर में हमारा विश्वास उस दीपक की भांति है, जिसकी सहायता से हम अपने जीवन की अंधेरी रातों में भी निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि स्वयं अब्राहम ने किया। अपने विश्वास में हम उस निष्ठावान सेवक की तरह होते हैं, जो अपने स्वामी के आने की राह देखते हुए सदैव अपने कार्यों को करने हेतु तैयार रहता है। आइए हम पवित्र आत्मा से ज्योति की कामना करते हुए अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों का अवलोकन करें, जो हमें जीवन में ईश्वर के बहुतायत कार्यों को देखने, जानने और समझने में मदद करेगा, क्योंकि विश्वास हमारे कार्यों से जुड़ा है और सर्वप्रथम ईश्वर ने अपनी करुणा में हमारे लिए अनगिनत नेक कार्य किए हैं। इस भांति हम ईश्वर पर अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा अभिव्यक्त कर पाएंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। अर्जेंटीना के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया कि पराहना के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्तानिस्लाव एस्तेबान कार्लिक का निधन हो गया है। वे 99 वर्ष के थे। संत अगस्तीन को समर्पित धर्म समाज के सदस्य पराहना के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्तानिस्लाव एस्तेबान कार्लिक को 10 मई को हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सर्जरी कर पेसमेकर लगाया गया था। अस्पताल से रिहा होने के बाद संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल कार्लिक को टेलीफोन कर उन्हें उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभकामनाएं दी थी तथा अपने प्रार्थना में सामीपिका आश्वासन दिया था। अस्पताल से छुट्टी के बाद कार्डिनल को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए येसुस बुएन पास्तेर पुरोहितीय निवास में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी दिन संत पापा लियो 14वें ने महान सादगी और अत्यंत अनुग्रह के भावों को अभिव्यक्त करते हुए उनसे टेलीफोन पर बात की थी। संत पापा से बातचीत के उपरांत कार्डिनल कार्लिक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस मुलाकात की खबर प्रकाशित करते हुए इसे गहन शांति के क्षण रूप में वर्णित किया था। परहाना के प्रति धर्माध्यक्ष फादर एदुआर्दो तांगेर ने वैटिकन न्यूज से बातचीत में बताया कि हालांकि कमजोरी की वजह से कार्डिनल कार्लिक संत पापा से अधिक बात नहीं कर पाए, तथापि वे सचेत थे। उन्होंने कहा कि संत पापा की इस पहल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिसके लिए उन्होंने गहन आभार व्यक्त किया था। 2005 से कार्डिनल संत अगस्तीन धर्म समाज के सदस्य और मित्र रहे हैं। जिस समय धर्म समाज के प्रायर जनरल फादर प्रोवेस्त यानी कि संत पापा लियो रहे थे। अपनी रोम यात्राओं के दौरान कार्डिनल कार्लिक प्रायः अगस्टीनियन धर्म समाजी मुख्यालय में रुकते थे, जहां उनकी मुलाकात भावी संत पापा से हुआ करती थी। स्तातिस्ता पत्रिका में इस वर्ष जून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 तथा 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या 4 गुना से अधिक यानी कि 30,000 से बढ़कर लगभग 1,34,000 हो गई है, और सबसे अधिक वृद्धि वियतनाम में देखी गई है। चूंकि वियतनाम सबसे अधिक संख्या में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं वाले देशों में से एक है, इसलिए विश्वव्यापी कैथोलिक उदारता संगठन कारितास की वियतनामी शाखा देश के धर्म प्रांतों में युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करके आगे के मामलों को रोकने का प्रयास कर रही है। वियतनामी कारितास की सिस्टर तेरेजा निन खान हाओ बताती हैं कि आजकल तस्करों को पीड़ितों को लुभाने और ठगने के लिए उनसे शारीरिक रूप से मिलने की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपराधियों के लिए उपजाऊ जमीन बन गए हैं। ऑनलाइन घोटालों के कारण कई वियतनामी लोग कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और चीन जैसे पड़ोसी देशों में पलायन कर गए हैं, जिससे राष्ट्रीय संकट और गंभीर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सिस्टर तेरेसा ने 100 से अधिक किशोरों से मुलाकात की और उन्हें धोखाधड़ी और मानव तस्करी के प्रति जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया। वे बताती हैं कि वियतनाम के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां सुरक्षित आप्रवास और मानव तस्करी के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जानकारी तक पहुंच सीमित है। वियतनामी कारितास असुरक्षित प्रवसन और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए गठित समिति के माध्यम से मार्गदर्शन और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से ऑनलाइन पाए जाने वाली गलत सूचनाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। परम धर्म पीठीय सुसमाचार प्रचार एजेंसी फीडेस के अनुसार वियतनाम उन देशों में से एक है जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता कुल जनसंख्या का 73% हैं। इनमें 17% उपयोगकर्ता 13 से 24 वर्ष की आयु के हैं। इंडोनेशिया में हाल ही में ख्रिस्ती आराधना स्थलों और संस्थानों पर हिंसक हमलों को दृष्टिगत रखकर देश के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने जकार्ता सरकार से आग्रह किया है कि वह सभी प्रकार की असहिष्णुता और हिंसा के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई करे। परम धर्म पीठीय सुसमाचार प्रचार एजेंसी फीडेस की रिपोर्ट के अनुसार धर्माध्यक्षों ने आग्रह किया कि अराजक कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, विशेषकर जब वे देश के किसी भी हिस्से में प्रार्थना और आराधना अर्चना गतिविधियों को निशाना बनाते हों। इंडोनेशियाई धर्माधीक्षीय सम्मेलन के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई धर्माधीक्षों की अपील ख्रिस्तीय समुदायों से जुड़े आराधना स्थलों और संस्थानों पर हाल ही में हुए कई हमलों के बाद आई है। इस अपील पर न केवल कैथोलिक नेताओं ने बल्कि कन्फ्यूशियस धर्म की सर्वोच्च परिषद माटकिन और बौद्ध तथा प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अपील में कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों से प्रार्थना स्थलों पर हिंसा, इनकार, बाधा या विनाश की हर घटना को रोकने तथा उसकी गहन जांच करने का आह्वान किया गया है। धार्मिक नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में स्मरण दिलाया गया कि धर्म पालन और पूजा की स्वतंत्रता इंडोनेशिया के 1945 के संविधान में निहित है और अनुच्छेद 28 और 29 के तहत इसकी गारंटी दी गई है। गाजा में इसराइल द्वारा प्रस्तावित सैन्य अभियानों के विस्तार की अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, सैन्य अधिकारियों और हमस द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों द्वारा तीखी आलोचना की जा रही है। 10 घंटे की सुरक्षा कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दी गई प्रस्तावित योजना में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यालय के आधिकारिक बयान में कब्जे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तथापि विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से प्रभावी रूप से संपूर्ण गाजा पट्टी इसराइल के नियंत्रण में आ जाएगी। सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में महीनों लग सकते हैं और इसके लिए हजारों सैनिकों की आवश्यकता होगी। इस योजना में गाजा शहर से निवासियों को निकालना भी शामिल है, जहां अनुमानतः 8 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया तीव्र रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स ने इसराइल को उन हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की जिनका इस्तेमाल गाजा में हो सकता था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस फैसले को गलत निरूपित किया है। इसी बीच हॉलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प ने कहा है कि इस कदम से बंधकों को घर वापस लाने में मदद नहीं मिलेगी, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुनरावृत्ति की कि गाजा फिलिस्तीनी लोगों का है, इसलिए तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता है। इसी तरह डेनमार्क ने भी इसराइल से अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।